Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अब उपाधि का लक्षण क्या है? उपाधि जो है बगैर आश्रय के कभी टिकती है? आपने किसी को इंजीनियर कह दिया तो इंजीनियर क्या हो गई? उसकी उपाधि हो गई। किसी को प्रधानमंत्री कह दिया तो क्या हो गई? वो कहां रहेगी? किसी व्यक्ति विशेष में रहेगी। व्यक्ति विशेष के बगैर तुम जो है उसे कह सकते नहीं, ठीक है ना? तो उपाधि जो है वो क्या है? वो तो आश्रित है और उसका आश्रय, तो आश्रित जो है आश्रय में है, आता है। तो आश्रय तो नित्य होता है और आश्रित अनित्य होता है। तो क्या सिद्ध हो गया कि तुलसीदास ने इसलिए लिख दिया नाम रूप दो ईश, ठीक है ना? लेकिन प्रारंभ में उसकी बहुत महती आवश्यकता, ऐसा नहीं। जहां पर तुलसीदास प्रशंसा करते हैं और जप के लिए नाम के जप की जो चर्चा की वो आवश्यक है, इसलिए यहां पर भी जपार्थ मेधा कामना के लिए, जप के लिए मेधा कामना की चर्चा की। मेधा क्यों कहा? क्योंकि उस जप के द्वारा भी मेधा को लेकर के और तुम जब उसमें विचार करोगे तब बात बनेगी। इसलिए अब जो है संकेत कर दें थोड़ा सा, चार चीजें जब तक जीवन में नहीं होती तब तक यथार्थता की प्राप्ति होती नहीं। वो चार चीजें क्या चाहिए? तो कहने लगे एक तो सत्संगति। क्या चाहिए? सत्संगति। और दूसरा क्या चाहिए? कहा विचार। दूसरा त्याग ले लो, वैराग्य कह दो, त्याग कह दो। तो सत्संगति, त्याग या वैराग्य, और तीसरा विचार। विचार कहो, विवेक भी कह सकते, लेकिन विचार विवेक में बहुत अल्प अंतर है। विचार की परिपक्वता का नाम विवेक है और क्रियात्मक जो है तब तक वह विचार है, लेकिन है दोनों एक जैसे, विशेष फर्क नहीं, लेकिन परिपक्वता का नाम है विवेक। और उसके बाद जब विवेक हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसी को बोध कहते हैं। तो सत्संगति, त्याग, विचार और संतुष्टि, संतोष, ये चार चीजें चाहिए किसी भी स्थिति पर पहुंचने के लिए, या जो ये आश्रय आश्रयी भाव होकर के जो ये ग्रंथि बन गई है, या जड़ चेतन की, सत्य असत्य की, तो क्या करना पड़ेगा? उसका भेदन करना पड़ेगा। विद्यते हृदय ग्रंथि, कब हृदय की ग्रंथि का भेद होगा? तब वहां संकेत किया उसके लिए चार चीजें आवश्यक। तो सत्संगति का अर्थ क्या है? सत्संगति का अर्थ है सतशास्त्र, और उस सतशास्त्र का किसी आचार्य, जो आचार्यवान पुरुषो वेद, जो उसको जानने वाला है, ऐसे उसका श्रवण करना। तो सतशास्त्र और आज के द्वारा जो है क्रम से उसका विचार आदि करते हुए उससे बोध प्राप्त करना, ये क्या है? उसका श्रवण करना, ये सत्संगति के अंतर्गत आ जाता। अब जो है इस प्रकार से करते हुए क्या होगा? तो सत्शास्त्र क्या बतलाते, यहां भी उपनिषद क्या बतला रही, माने सत क्या है, असत क्या है। अब जो है इसको करते हुए तब क्या होगी? तब जब हम ऐसा सुनेंगे, तब ये विषय जब सामने आया सत और असत का, तब जिज्ञासा होती है कि सत क्या है और असत क्या है। ऐसा जब शास्त्र कहते हैं तो सत असत को जानना, अलग करके जानना चाहिए। तब किसकी आवश्यकता है? तब है विचार की आवश्यकता। और विचार कैसे होगा? विचार के लिए भी सहायक साधन चाहिए। विचार का मतलब है सत को अलग से देखना और असत को अलग से देखना, दोनों के स्वरूप को जान लेना, समझना, ये क्या है? ये है विचार। और जब इसका विचार करोगे तो विचार करने के लिए क्या चाहिए? कहा इसके लिए तीन सहयोगी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मोटा उदाहरण समझ, अब तो मशीनों से काम होता, पहले जो है आपने देखा धान, क्या देखा? धान। और धान में क्या विद्यमान है? चावल। लेकिन जब धान है तो धान की स्थिति क्या है? चावल है, और चावल के ऊपर उसका छिलका आवरण भी विद्यमान। लेकिन आपने सत्संगति की और सत्संगति करके आप चाहते हो कि हमें तो सत मिल जाए, क्या चाहते? चावल मिल जाए, है ना? और चावल को धान को लेकर के ही चावल समझ के प्रयोग करोगे तो सारे के सारे तालू में छिद्र हो जाएंगे, तो सुख की जगह वहां पर दुख की प्राप्ति, तो क्या करना पड़ता? तो कहने लगे उसको अलग अलग करना पड़ता है। अलग किससे होगा? विचार। अब यदि उसको अलग करना चाहते हो तो अलग करने के लिए मैंने विचार के द्वारा अलग होगा ऐसा संकेत किया, लेकिन यहां पर स्थूल उदाहरण के द्वारा बतला रहे कि उसे अलग करना है तो अलग करने के लिए साधन चाहिए। क्या साधन चाहिए? तो पहले क्या था, जब ये मशीनों का विकास नहीं हुआ तब क्या था? तीन साधन होते थे, एक तो ओखली है, दूसरा मूसल है, और एक चीज और होती थी है सूप। क्या बोलते थे? सूप। इन तीन के द्वारा ही उनको पृथक किया जाता था है? अब जो है ओखली में उसको रखा और मूसल से उस पर चोट मारी और फिर सूप से उसको तो चावल हो गए, और जो भी तूसी आदि थी, छिलका आदि था, वो अलग हो गया। ये हुआ ना? तो अब इसके लिए क्या संकेत किया? वैराग्य की ओखली और विचार का मूसल, क्या चाहिए इसको समझ लो। माने वैराग्य की ओखली और विचार का मूसल, मूसल क्या करता? चोट मारता है। मूसल क्या करता है? चोट मारता, तोड़ता है, और जैसे ही टूटता है तो कष्ट तो होगा। विचार भी क्या करता है? तो पृथक करता है, पृथक, पृथकत्व करेगा, और पृथकत्व करेगा तो विचार भी चोट मारता है। इसलिए विचार सामान्य नहीं, जब भी विचार करने जाते हो तो चोट बैठती है, जहां जहां भी हमारे संबंध, जहां जहां हमने एकता बांध रखी, और जब विचार करने लगते सत असत का इत्यादि का, तो वहां पर जो है जब वो हटते हैं तो आसक्ति टूटती है, और टूटती है तो कष्ट होता है, ठीक है ना? तो अब जो है विचार का मूसल, और कहने लगे सूप क्या है? तो इसी विवेक का नाम है सूप। तो इससे क्या होता है? तो कहने लगे कबीर दास ने लिखा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। क्या संकेत किया? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। और फिर आगे क्या कह दिया? ये तो रूपक दे दिया, आगे क्या कहा? सार सार को गहे रहे और थोता दे सूप। क्या करता? जो सार चावल है उसको ग्रहण कर लेता है, और जो थोता, थोता माने व्यर्थ, उसको उड़ा। लेकिन ये व्यर्थ कब हुआ? पहले व्यर्थ नहीं, पहले तो चावल की प्राप्ति के लिए छिलके की भी महान आवश्यकता है, सर्वथा आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राप्ति होने के बाद उसकी आवश्यकता नहीं, जब तक वह प्राप्त नहीं है तब तक उस छिलके की भी आवश्यकता है। ऐसे ही जब तक उसे प्राप्त नहीं कर पाए तब तक नाम की भी महती आवश्यकता। लेकिन प्राप्त होने पर नहीं। एक बड़ी सुंदर चर्चा आई, आप जिन्हें गोपिकाओं की चर्चा करते हो, भक्ति की चर्चा करते हो, उन गोपिकाओं के विषय में बड़ी सुंदर बात कही। श्रुतया पलाल कल्प किम इह वयम चिन्म आहतम परम ब्रह्म आभिरीभ दृष्टि भी। वहां पर उद्धव जैसे ज्ञानी महापुरुष पहुंचे और भी तो क्या कहने लगे, कहने लगे, माथा ठोंकने लगे। कहा मैं तो ठग गया। कहा क्यों? कहा जो जिस पर ब्रह्म को हम प्राप्त करना चाहते थे उसे तो जो है, कहा गोपियों ने निकाल लिया। अब क्या स्थिति हो गई? जिन श्रुतियों को हम ढूंढ रहे हैं, जिन श्रुतियों में ब्रह्म का प्रतिपादन है, अब वो श्रुतियां कैसी हो गई? कहा पलाल कल्प है, जैसे धान निकाल लो तो क्या बच जाता, पुआल मात्र। कहा श्रुतियां तो पुआल के तरह से हो गई। कहा क्यों? अब हम किसका चिंतन करें, किसको ढूंढें, क्योंकि अब पाल में तो कुछ मिलना नहीं। तो कहने लगे ये तो पाल के समान। कहा क्यों? कहा इसमें से जो ब्रह्म था, जो चावल था, वो तो निकाल लिया। आहतम परम ब्रह्म, लेके किसने निकाल लिया? आभिरीभ दृष्टि भी, उन हीरों की छोरियों ने अपनी दृष्टि मात्र से और इसको निकाल दिया। संकेत करें तो ये तो चर्चा है। कहने का मतलब कि सत्संगति, वैराग्य, विचार और संतोष। अब चावल आपने निकाल लिया, अब चावल तो निकलाया, संतोष विवेक तक आप पहुंच गए, बोध तक पहुंच गए है? कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये बोध भी जो है अहम ब्रह्मास्मि का जिय की जलने न जाए, तब तक हृदय के अंतर होने तो होने वाला जो है दुख है, विक्षेप है, वो निवृत्त नहीं होता। कब तक? कहा चावल निकाल लिया, अलग रखा हुआ, लेकिन जब तक उदर में, और जैसे ही उस चावल को उदर में ले गए, लेकिन उदर में जाने से भी काम नहीं करेगा, उदर में तो गया लेकिन उदर में जाकर के जठराग्नि ने उसे पचाया, और जठराग्नि ने नहीं पचाया तो भी आपको उससे संतोष होने वाला, संतुष्टि होने वाली नहीं। तब तो डॉक्टर के पास जाओगे हैं, पेट भारी हो गया, ये सब जो है चलेगा। और जैसे ही उसमें जठराग्नि ने उसे पचा दिया, और पचा दिया तो क्या हो गया, पचने से उससे रस बना, रक्त बना, मांस बना, मेद बना और अस्थि मज्जा आदि बनते हुए और अंत में मन ही बन गया। क्या बन गया? आपकी दृष्टि ही बन गई, और दृष्टि बन गई और वो दृष्टि में जब समाहित हो गया तो क्या स्थिति हो गई, आत्मसात हो गई। तब आपकी जो अभेदता, वो अभेदता और ये अभेदता, दोनों में फर्क है। और ये जब हुआ तो आपने सार के साथ अभेदत्व प्राप्त किया, और जैसे ही होता है तो वो आपका स्वरूप होता, वहीं पर परम संतुष्टि की प्राप्ति होती, उससे पहले संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। तो ये है संतोष। संतोष का मतलब ही, तो ये जो है, इस प्रकार से जब हमारे जीवन में सत्संगति और वैराग्य त्याग कहें, और विचार विवेक कहें, और उसके बाद संतोष, ये चार चीजें आई, और भी नाना प्रकार से मोटे उदाहरण हैं। आप जैसे देखते हो आम बढ़िया हापुस आम है, लेकिन हापुस आम आपके सामने कब आया भाई? पहले तो है उस पौधे ने जमीन से रस को ग्रहण किया, खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया, फिर उस पुष्पित हुआ, फिर फलित हुआ, फिर काफी समय तक उस पर रहा, फिर उसके बाद सूर्य के पाकज अपाकज विलक्षण तेज संयोग के द्वारा उसमें परिपाक हुआ, और परिपाक होने पर फिर वो है पककर के फिर तुम्हारे सामने आया। इतना हुआ, लेकिन इतनी क्रिया हुई, ध्यान रखना, इतनी क्रिया होने के पश्चात जब वो सामने आया और आपने उसे जो है ग्रहण कर लिया, और ग्रहण कर लिया, अब जब आप उसको ले आए तो उसमें क्या देखते हो? कहने लगे आम, इस संज्ञा में भी तीन रूप हैं। क्या क्या हैं? तो कहने लगे उसमें छिलका भी है, और उसमें गुठली भी, और उसमें रस भी। अब आम को देखते रहो उतने से संतुष्टि नहीं होगी, तो क्या करना पड़ेगा? कहने लगे उसमें से है विचार कहो, या उसका पृथक्करण कहो, और करोगे तो क्या करोगे? छिलके को अलग कर लिया, गुठली को अलग कर दिया, रस को अलग कर, और जब ये अलग कर लिया तो अलग करने पर विचार के द्वारा जब अलग कर लिया तो फिर क्या होगा? अब छिलके को गुठली को क्या संजो के रखोगे? कहोगे इसके भी पैसे गए, 500 रुपए के हिसाब से आया है तो इसके भी पैसे गए हैं, इसलिए जो है ये भी मूल्यवान। लेकिन मूल्यवान होते हुए भी क्या करते हो? वहां पर उसका त्याग और ग्रहण किसे करते हो? और यदि गुठली छिलके को ग्रहण करो तो वो संतुष्टि देने वाले नहीं, संतुष्टि जो है वो किससे मिलेगी? रस से। और रस ही उसमें क्या है? सार। रस छिलके में भी, यानी छिलके को भी जन्म देने वाला, छिलके को भी छिलका रूप प्रदान करने वाला रस ही था, गुठली को भी गुठलित्व प्रदान करने वाला रस ही था, लेकिन वही उनके माध्यम से वो रस सुरक्षित रहा। और फिर वही रस जब अलग कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया, तो रस सार रह गया और छिलके गुठली व्यर्थ हो। तो यहां तक छिलके की भी आवश्यकता, गुठली की भी आवश्यकता, लेकिन आवश्यकता कहां तक है? क्योंकि रस की प्राप्ति के लिए छिलके और गुठली हैं। लोक वेद आदि देव जो भी हैं वो सब किसके लिए है? यह अक्षर रूप जो रस, या दूसरे रूप से कह दो इसको नाम रूप, और इसमें रस रूप क्या है? आत्मा। क्योंकि व्याप्ति अर्थ में ही आत्मा शब्द बनता है, तो जो सर्वत्र व्याप्त है वो सत्ता क्या है? तो उसी का नाम है आत्मा। क्योंकि सर्वत्र व्याप्ति होने के कारण ही उसे संज्ञा दी गई आत्मा। तो जो सर्वत्र व्याप्त है उसी को जो है कभी उसका राहित्य नहीं होता, इसलिए उसे नाम कह दे दिया गया अक्षर। उसी का नाम क्या है? अक्षर। तो ऐसा जो अब नाम और रूप छिलके और गुठली के समान है, लेकिन आत्मा उसमें क्या है? रस रूप। लेकिन है तो अब इसका पृथक्करण करना होगा, तब उसके लिए क्रम है। तो क्रम क्या है? तो जो जैसे मूल में कहा चित्त और चित्त, तकार आकर के कहां पर स्थित हुआ, कहां पर अपनी सत्ता को प्रतीत कराने लगा? तो कहने लगे उसी चित्त में, और चित्त में जब आ गया तो क्या कहलाने लगा? कहा चित्त नाम पड़ गया उसका, और चित्त नाम पड़ गया तो चित्त में ही सारा व्यवहार, चित्त में कोई व्यवहार नहीं, व्यवहार कहां हुआ? चित्त में। तो इनको जब पृथक करके जान लेते हैं तो चैतन्य जो है वो नित्य है, सत्य है, अक्षर रूप है, और तकार जो है वो क्या है? उसमें आरोपित है। ऐसे ही यहां पर जो भू भुव श्व, ये जो क्या है? व्याहृतियां। व्याहृतियां का मतलब ये है जिनके व्यवहार के द्वारा, व्यवहार उपयोगी, तो वह अकार उकार मकार से जो भू भुव श्व ये व्याहृतियां निकाली, और उन व्याहृतियों के अंतर्गत व्यवहार क्या होने लगा? तो भू से समस्त लोक देव हैं, अग्नि आदि जो है इन व्याहृतियों के द्वारा बतला दिए, और क्रम से तो पृथ्वी आदि जो है भू से बतला दिया, और अष्ट वसु ब्रह्मा आदि देव बतला दिए, अग्नि जो है गर्भपत्य आदि अग्नि बतला दी, तो ये जो लोक है वो सब किससे? भू से कह दिया। अर्थात इस लोक का भी आरोपण हुआ है। कहां हुआ? कहां? उसी सत्ता में ऐसे ही अंतरिक्ष आदि लोकों का भी आरोपण किया और ऐसे ही जो है देव आदि लोकों का आरोप, और तीन लोक। लेकिन तीन जो लोक हैं, इन तीनों लोकों में व्याप्ति किसकी है? इन तीनों लोकों में व्याप्त कौन लगे? जैसे वहां छिलके गुठली हैं, मैं सब में कौन व्याप्त? रस ही व्याप्त। इसलिए यहां कहेंगे ओम की उपासना व्याहृति रूप से करने के लिए क्यों कहा? यहां पहले ही बतला दिया, फिर जो है उसके लिए क्यों विशेष करके कहते हो, स्वराज्य की सिद्धि कहते, ऐसा क्यों कहते? तो कहा यहां पर ओम के जो धर्म हैं उनको विशेष रूप से जानने के लिए। कहा विशेष धर्म क्या है? रस तमत्व समृद्धि, ये उसके धर्म। जहां पर भी इस ओम को इस प्रकार से हम आरोपण आदि होते हुए फिर आरोपण का अपवाद करके जैसे जानते हैं, तो ये जो ओम है वैसा है, कैसा है? तो रस तमत्व इसके अंदर विद्यमान। केवल रस नहीं, तो रस तमत्व। और तमत्व मतलब है क्या? रस, और रस से अधिक रस नहीं, माने रस की ही सर्वथा अधिकता, रस रूपता, ऐसा संकेत। और समृद्धि, सम्यक वृद्धि को देने वाला, सम्यक फल को देने वाला कौन है? तो ये, इसी से समस्त समृद्धि। और समृद्धि को लेकर जिस समृद्धि के द्वारा संतोष प्राप्त होता है, ऐसी समृद्धि से युक्त हो, ये अक्षर तत्व है। इसलिए उसकी उपासना को बतलाने के लिए क्रम से ये आरोपण लोकों के किए गए और भू भुव स्व ये व्याहृतियां बतलाई गई। लेकिन वहीं संकेत कर दिया य भू य भुव य स्व, इनके द्वारा होने वाले लोक वेद अग्नि छंद आदि शब्द क्या हैं? तो कहने लगे मोह। आगे क्या संकेत किया? चतुर्थी जो मात्रा इसके अंतर्गत कही गई वो क्या बतलाई? मह नाम की। अर्थात मह शब्द का अर्थ है मह माने प्रकाश लिए, और मह माने महानता, मेहमानित करने वाला, इन सबको मेहमानित करने वाला, इन सबको प्रकाशित करने वाला, इन सबको सत्ता देने वाला कौन है? तो चाहे वो भू हो, चाहे भुवा हो, चाहे स्व हो, इन सबको सत्ता देने वाला है। तो चतुर्थ जिसकी तरफ संकेत, वो चतुर्थ नहीं, इसलिए कहीं पर उसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अकार उकार मकार को बतलाते हुए और फिर तुरीय मात्रा की चर्चा कर दी। और तुरीय शब्द का अर्थ चतुर्थ नहीं, तुर धातु जो है पूर्णार्थक है, उसका मतलब है पूर्ण, माने जो पूर्ण है। और पूर्ण का भी मतलब ऐसे समझना जैसे चार चवन्निया, 25 पैसे के चार सिक्के, तो क्या कहो? 1 रुपया, है ना? ऐसे ही चार पहाद चार मात्राओं की कल्प। लेकिन जब तक 3 चवन्निया है तब तक क्या कहोगे? तब तक 1 नहीं कह सकते, 1 पूरा रुपया नहीं कह सकते, है ना? है अधिकता, लेकिन तब तक उसमें जो है 99 पैसे हो तो भी पैसे कहोगे 1 रुपया, ठीक है? इसी प्रकार से यहां पर जो है इसकी पात्रता को बतलाते वो 1 है। और 1 कह करके क्या संकेत करते हैं? कि उस 1 रुपये की ही सत्ता, अर्थात 1 रुपये का अवयव 25 पैसे भी है और 1 पैसा भी क्या है? उस 1 रुपये का ही अवयव है, उससे भिन्न उसकी सत्ता नहीं, 1 रुपये के अंतर्गत ही है। ऐसे ही ये सारे लोक वेद आदि जो कुछ भी हैं वो किसके अंतर्गत हैं? कहा इस अक्षर तत्व के अंतर्गत हैं, ओम के अंतर्गत हैं, ऐसा यहां पर संकेत करते हैं। इसलिए यहां ऐसे ओम का बोध कराने के लिए व्याहृतियों के द्वारा आरोपण दिखला रहे हैं, और आरोपण दिखलाते हुए मह नाम की मात्रा के द्वारा सबका अपवाद दिखलाना चाहते हैं, और ऐसा दिखला करके उस जो परम है संतोष देने वाला है उसकी प्राप्ति कराने का प्रयास है। आगे चर्चा कल ओम।